ओम शांति। आज का टॉपिक है संगठन के 16 सूत्र। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। एक बार एक मनोवैज्ञानिक होता है और आदिवासी अफ्रीकन बच्चे होते हैं। तो वो क्या करता है, एक टोकरी में बहुत सारे चॉकलेट्स और कैंडीज भरता है और 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के पास रख देता है वो टोकरी, और उनसे कहता है कि मैं कहूंगा रेडी स्टेडी एंड गो, फिर सबको भागना है और जो सबसे पहले पहुंचेगा तो वो सारी कैंडी और चॉकलेट खा सकता है। तो सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो कहता है रेडी स्टेडी एंड गो। तो सब बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ में दौड़ते और साथ में दौड़कर पहुंच जाते हैं साथ में, और साथ में सारी कैंडीज और चॉकलेट्स खाने लगते हैं। तो ये देखकर वो मनोवैज्ञानिक कहता है ये कैसे दौड़ने लगे आप लोग, ये क्या है। तो वो तो आदिवासी बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं उबुंटू। तो वो कहता है इसका मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति खुश है, और कैसे रह सकता है एक व्यक्ति खुश अगर बाकी सब दुखी है। तो वो कहता है अच्छा, मतलब इसीलिए वो सब साथ में दौड़ते हैं और साथ में खाते हैं। तो वो जो कहते हैं ना उबुंटू, उसका मतलब होता है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं, आई एम बिकॉज वी आर। तो कहानी का मॉरल है कि संगठन में कितनी ताकत है, और हम जब संगठन में हैं तो खुशी है। और तो आज का हमारा टॉपिक संगठन के 16 सूत्र है। तो संगठन यानी कि ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल, टीम, इसको और कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहेंगे संगठन। और सूत्र यानी कि प्रिंसिपल्स। तो ऐसे कौन से वो 16 सूत्र है जो संगठन को बांध के रखते हैं। आप देखेंगे जब से ही हम जन्म लेते हैं, हम कोई ना कोई संगठन में होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम कोई फैमिली में होते हैं, वो एक संगठन है। जब हम स्कूल जाते हैं तो वो भी एक संगठन है। जब हम अपने जॉब्स पर जाते हैं तो वो भी एक संगठन है। जब हम बचपन में खेलते हैं तो वो भी एक संगठन है। तो हम हमेशा कोई ना कोई संगठन में रहते हैं। और कहते हैं कि सफलता का आधार ही संगठन है। अगर हम संगठन में हैं तो सफलता निश्चित है। और कोई भी एक शक्तिशाली संगठन कोई भी समस्या का उत्तर दे सकता है। तो ऐसे अलग अलग संगठन होते हैं, जैसे कि कोई सोशल संगठन होता है, कोई इकोनॉमिकल फाइनेंशियल संगठन होता है, कोई साइंटिफिक लोगों का संगठन होता है, रिलीजियस संगठन होता है, कम्यून होता है। तो ऐसे अलग अलग संगठन होते हैं। और जैसे यहाँ पर भी अलग अलग संगठन है ना, ये एक बड़ा संगठन है हमारा ब्रह्मा कुमारीज का, इसमें भी अलग अलग संगठन है। जैसे ये एक ग्रुप है, सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप एक संगठन है, तीवर पुरुषार्थी ग्रुप, अलग अलग विंग्स भी संगठन है। हाँ, जैसे हमारे 18 विंग्स है तो वो भी एक एक संगठन है। 21 अच्छा, तो इतने सारे संगठन है। जैसे मधुरवाणी ग्रुप है तो वो एक संगठन है ना। मधुबन निवासी एक संगठन है, हॉस्पिटल निवासी भी एक संगठन है, ज्ञान सरोवर निवासी, एक एक डिपार्टमेंट एक संगठन है अपने में। नहीं, संगठन का अर्थ है दो व्यक्ति और अधिक जब मिलकर कोई भी चीज के लिए कार्यशील है उसको कहेंगे संगठन। मैं और बाबा एक संगठन है। लेकिन दो लोग चाहिए संगठन के लिए, कम से कम दो लोग चाहिए। तो संगठन के 16 सूत्र क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है, सबसे पहला सूत्र है कि लक्ष्य, गोल होना चाहिए। कोई भी एक संगठन जब बना है तो उसका गोल होना चाहिए, ताकि सारे मेंबर्स को पता चले कि हमको क्या करना है। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि गोल क्या है हमारे इस संगठन का। तो जैसे कि अगर हम ये संगठन ले, छोटा सा सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप, जैसे इसका नाम ही रखा है सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप, तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्लासेस होते हैं, सब कुछ सेल्फ प्रोग्रेस के लिए होते हैं। जैसे सबका अनुभव होता है कि अगर हमको कोई टॉपिक दी गई तो हमारा पूरा चिंतन चलने लगा, हम व्यर्थ से मुक्त हो गए, हमारा मन कहीं नहीं भटक रहा था, है ना। सब यही एग्जांपल्स देते आके कि जब हमको टॉपिक दी गई तो ये तो सेल्फ प्रोग्रेस। जब हम यहाँ पे बैठ के कोई भी टॉपिक पर बोलते भी है तो हम सबको ये अनुभव है कि लास्ट तीन दिन, लास्ट चार दिन कितना प्रोग्रेस हुआ। तो हमारा लक्ष्य है इस ग्रुप का कि हमारा सेल्फ प्रोग्रेस हो जो भी हम करें। जैसे कि इस ग्रुप में जो भी चीज पोस्ट भी की जाती है वो बहुत सोच समझ के पोस्ट की जाती है कि वो सेल्फ प्रोग्रेस के लिए हो। कुछ भी नहीं पोस्ट करते, जैसे डेली इंस्पिरेशन करते हैं ये पोस्ट, तो वो भी आप पढ़ेंगे तो इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि मतलब उस पे भी अगर आप चिंतन करो 10 मिनट तो बहुत अच्छा होता है। तो वो भी जैसे इंग्लिश ग्रुप में श्याम भाई क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं तो वो किसी और के लिए नहीं होता, ना ही है ना हम उनको बोलते हैं कि हमको आंसर्स भेज दो और हम कॉम्पिटिशन रखेंगे, ये कुछ नहीं है इस ग्रुप में। लेकिन हम अपने लिए ही वो क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं इंग्लिश ग्रुप में भी। तो ऐसे अलग अलग चीजें यहाँ पर करते हैं तो उससे हमारा ही प्रोग्रेस होता है। और दूसरा, जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में कहा ना कि बच्चों को तीन चीजें परेशान करती है, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। चंचल मन, भटकती बुद्धि, तो ये बुद्धि का जो भटकना है वो सब बंद हो जाता है क्योंकि हमने लक्ष्य ही रखा है इधर की हमारा सेल्फ प्रोग्रेस हो, हम चिंतन हमने इस ग्रुप का लक्ष्य रखा है। तो सबसे पहले संगठन में होना चाहिए कि लक्ष्य होना चाहिए ग्रुप में। सेकंड पॉइंट, विलिंगनेस टू लर्न, एक दूसरे से सीखने की भावना होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। हम ऐसे ना हो कि बस मैं ही ग्रेट हूं और वो अहंकार, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर किसी में कोई कला है तो वो हमको सीखनी है। सिर्फ बार बार बोल के नहीं होगा कि अरे आप तो बहुत अच्छा है बोलते हो, अरे आपको तो पूरी मुरली याद रहती है। तो अगर उसको उतनी पूरी मुरली याद रहती है तो उसको क्यों याद रहती है वो मुरली, तो सीखे उससे कि वो ऐसे क्या कर रहे हैं जो उनको मुरली याद है। फिर है ना, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती है, किसी किसी में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। संगठन में देखा होगा ना, कोई कोई लीडर्स होते हैं तो वो उनमें क्यों है वो क्वालिटीज, वो उनसे सीखना। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं किसी ना किसी में है, वो हमको देख के सीखना है। जैसे कोई गाइड सेवा करते हैं तो उनको देखना वो कैसे सेवा करते हैं, वो भी एक संगठन है ना, कि एक ग्रुप है वो। तो वो जब गाइड सेवा करते हैं तो क्या एग्जाम्पल्स देते हैं, इतनी रमणीकता से समझाते हैं, तो मुझे भी वो सीखना है, ना कि सिर्फ बोल के वहीं रुक जाना या अपने आप को समझना कि मैं तो नहीं कर सकती। तो वहां तक नहीं होना चाहिए, सीखने होना चाहिए। क्योंकि संगठन शक्तिशाली कब बनेगा, जब इसके सब मेंबर्स नंबर वन होंगे, तब संगठन शक्तिशाली होगा। इसीलिए विलिंगनेस टू लर्न, एक दूसरे से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। थर्ड, टीम लीडर, एक संगठन के लिए टीम लीडर होना चाहिए, लीडर का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम क्रिटिकल केयर में काम करते हैं ना, तो जब है ना कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आता है, जब हार्ट स्टॉप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सीपीआर टीम। तो उसमें एक टीम लीडर होता है, बाकी सब टीम मेंबर्स होते हैं। अगर टीम लीडर नहीं हो तो सारे लोग अपने आप जो करना है वो करते रहेंगे, वही कुछ भी करेगा। लेकिन जब टीम लीडर खड़े रह के जो बोलेगा वही सब टीम मेंबर्स को करना होता है। वो बोलेगा ऑक्सीजन लगाओ, वो बोलेगा कार्डियक मसाज करो, वो बोलेगा इंजेक्शन दो, तो वैसे और वैसे ही वो स्टेप वाइज बोलता है हर चीज टीम लीडर, तो टीम मेंबर्स करते हैं और तो पेशेंट ठीक होता है, नहीं तो पेशेंट का तो कल्याण अगर टीम लीडर नहीं है। तो इसीलिए टीम लीडर होना बहुत जरूरी है संगठन में। तो इसीलिए हर संगठन में कोई ना कोई लीडर होना चाहिए जो गाइड करे, टीम लीडर होना चाहिए। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट ना, गुड कम्युनिकेशन, एक दो के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो जैसे भी जो भी चीज ग्रुप के लिए डिसाइड की गई तो वो सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज इधर हम करने वाले हैं, नहीं तो किसी को कोई क्लैरिटी नहीं होती कि क्या होने वाला है। और ये जो होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि ये मैसेजेस द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा कभी कभार गलतफहमी भी हो जाती है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वो भी एक है। और कम्युनिकेशन जब होता है ना तो एटलीस्ट रूमर्स नहीं फैलती है, क्योंकि सबको पता है कि ये चीज होने वाली है, वरना फिर सबके इतने संकल्प चलते हैं और कुछ ना कुछ अलग बातें फैल जाती है। तो इसीलिए संगठन में हमेशा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे अगर कोई प्रोग्राम है, दादी जी आने वाले हैं, दादी जी नहीं आने वाले, तो उसके लिए सारे संकल्प चल रहे हैं, सारे मैसेजेस चल रहे हैं। तो एक मैसेज अगर आ गया कि हाँ ये ऐसे होने वाला है, तो सब शांत हो जाते हैं, है ना। जब कम्युनिकेशन गेट थ्रू हो जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो सबके संकल्प चलते हैं, इसीलिए गुड कम्युनिकेशन। फिफ्थ पॉइंट, यूनिटी, एकता। संगठन में एकता होनी चाहिए एक दो के बीच, जैसे एक ने कहा तो दूसरे ने माना, है ना। हाँ जी, हाँ जी का पार्ट पक्का होना चाहिए यहाँ पर। एक मत होके चलना चाहिए। तो यूनिटी होनी चाहिए संगठन में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमने सोचा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए संगठन में। फ्लेक्सिबिलिटी, ये पॉइंट किस तरह से लिया हमने कि ऐसा ना होना चाहिए कि बार बार टोका टोकी चलती रहे कि ऐसा ही करो ऐसा ही करो। संगठन में ये नहीं होना चाहिए कि टॉन्टिंग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कभी कभार होता है ना कि जो टीम लीडर होता है ना, वो बोलता है ऐसे ही करने का ऐसे ही करने का, वो टोकते रहेंगे ना तो जो टीम मेंबर्स की एफिशिएंसी होती है, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, वो सब चली जाती है, तो कम हो जाती है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि है ना संगठन सफलता को पाए और है ना व्यक्तियों की क्रिएटिविटी दिखने में आए, तो उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। सपोज अगर मैं नहीं, हाँ क्या हम क्या करें, नहीं वो आगे पॉइंट्स आएंगे, उसके लिए वैल्यूज है, तो क्या करें जब कोई टोक रहा है। तो जैसे अगर मैं सीनियर हूँ और मेरे अंडर डॉक्टर्स है, और मैं उनको बार बार बोलूँ तुमने ये रॉन्ग किया, तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने ये, तो वो सीखेंगे कब? अगर मैं बार बार उनको इतना ऐसे करते रहूं तो वो सीखेंगे कब? तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको थोड़ी फ्रीडम देना है कि वो अपना भी बुद्धि लगाए और है ना कोई भी कार्य करे, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन है ना जब कोई टोकता है तो पता है ना क्या होता है अंदर से, वो भी तो अनुभव है। तो उस तरह से बहुत ज्यादा टोकना भी नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रिसिएशन रिवॉर्डिंग शेयरिंग ऑफ सक्सेस। तो इधर भी अगर किसी को सफलता मिलती है संगठन में, तो ईर्ष्या ना हो उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन हम खुश हो उसकी सफलता पर और उसको अप्रिशिएट करें। इसमें हमने क्रिकेट मैच का एक उदाहरण सोचा, जैसे कि अगर कोई बॉलिंग करता है, हाँ, तो वो जो बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉल ऊपर जाता है तो कोई पकड़ता है और फिर वो विकेट कीपर के पास भेजता है और फिर वो स्टंप पे मारता है तो वो आउट होता है। अब इसमें कितने सारे व्यक्ति है ना, ये भी एक संगठन है, लेकिन नाम किसका होता है कि बॉलर का, कि उसने विकेट लिया। लेकिन शेयरिंग ऑफ सक्सेस होना चाहिए कि ये संगठन है और सबकी हेल्प की वजह से हमको सफलता मिली, तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे मैन ऑफ द मैच मिलता है क्रिकेट में, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना मैन ऑफ द मैच सब पूरी टीम के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो उसका अकेले का शेयर नहीं था, लेकिन सबका शेयर होते हुए वो सफलता मिली टीम को, तो ये होना चाहिए। ये उदाहरण हमने पहले भी दिया है, जो अब्दुल कलाम आजाद जी, तो 1979 में जब एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली थी, तो जो प्रोफेसर सतीश धवन थे, तो ये टीम लीडर थे, है ना, ये हेड थे, और इनके अंडर अब्दुल कलाम आजाद जी और इनकी टीम काम कर रही थी वो सैटेलाइट लॉन्च होने के लिए। और क्या हुआ, वो सैटेलाइट ऊपर नहीं गई, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई। तो फिर जब भी सैटेलाइट लॉन्चिंग होती थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो क्योंकि इनकी थोड़ी कुछ गलती की वजह से हुआ था ये, लेकिन सतीश धवन को ये पता नहीं था, वो तो नॉट रिलेटेड भी थे, वो तो सिर्फ हेड थे मॉनिटर करने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन जब फेलियर हुआ तो उन्होंने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस किया और उन्होंने कहा कि ओके इस टाइम मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, उन्होंने ऐसे बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर नेक्स्ट ईयर वापस सैटेलाइट लॉन्च हुई और वो लॉन्च हो गई और सक्सेसफुल थी। अब इस टाइम सतीश धवन ने क्या कहा, अब्दुल कलाम आजाद जी को कहा कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस करेंगे, मैं नहीं। तो जब सक्सेस हुई तो उन्होंने अपनी सक्सेस शेयर की, है ना। जब फेलियर था तो एज अ टीम लीडर वो गए और फेस किया, लेकिन जब सफलता हुई तो उन्होंने उनको चांस दिया कि जाओ और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो। तो ये भी होना चाहिए कि जब हम संगठन में, हमको जब सफलता मिलती है ना, तो सबके साथ वो शेयर करने की भावना होनी चाहिए हमने। तो शेयरिंग कि ये सब हमारे सबके सहयोग से हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने किया, मैं हाँ नहीं, हम बताएंगे ना उनको कि है ना हम सबके सहयोग से हुआ है। जैसे अभी आपको कोई बोलेगा अरे डॉक्टर सचिन आपकी वजह से ये क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं तो आप वही बोलेंगे ना कि है ना ये तो है ना बाबा की सेवा है, ये तो हमारे ग्रुप एडमिन है जो इतना अच्छा रिकॉर्डिंग करते थे, श्याम भाई हेल्प करते, तब जाके आप लोगों तक ये क्लास पहुंचती है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात है कि वहां पे वो मैं पढ़ना आए कि मैं करता हूँ सब कुछ। मेरा आंसर मैं बोलूंगी मुझे कितने लोगों ने गाइड किया ये क्लास करने के लिए, सबके सहयोग से ये क्लास हुआ। वो बोलेंगे ना, लेकिन हमको सामने से तो ये बोलना है ना एटलीस्ट, और फील भी वो करना, वेरी इंपॉर्टेंट कि फील वो करना है, बोलने से सब कुछ नहीं है। जैसे ये बोल रहे फील करना है अंदर से, ये फीलिंग वाली बात है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हेल्दी कॉम्पिटिशन। संगठन में आपस में हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। चाहे योग के चार्ट में हम कंपटीशन करें, अगर कोई पुरुषार्थी ग्रुप है, या तो अगर प्रदर्शनी में कोई चित्र है तो चलो लेट सी कि कौन अच्छे से समझा सकता है इस चित्र को, क्या हम एग्जांपल्स देंगे, क्या हम स्लोगन्स बोलेंगे, क्या हम कोट्स करेंगे। तो ये हम इस पे कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे एक भाई ने उस दिन कहा कि संगठन में ना कंपटीशन होना चाहिए, चलो कंपटीशन करते हैं, जब रेस होगा ना तो मैं तो जीत ही जाऊंगा क्योंकि मैं किसी को मेरे से आगे जाते हुए देख नहीं सकता। तो मैंने बोला ये तो रेस हो गई, ये रेस नहीं हुई। तो बाबा ने कहा है ना कि एक दो से रेस करो, रेस नहीं करो। तो ये भी होना चाहिए कि हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए संगठन में। अनहेल्दी ये कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। नहीं नहीं, इसीलिए तो पॉइंट है कि हेल्दी कंपटीशन, उसका नाम ही रखा है हेल्दी कंपटीशन। नेक्स्ट संगठन में डिसिप्लिन एंड मैनर्स होने चाहिए। अभी डाउट अलग बात है, लेकिन है ना ऐसे लोग होते हैं ना कि है ना अपने ही संगठन में है ना पैर डाल के सामने वाले को गिराने वाले, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक और पॉइंट भी हमारे पास, सो डिसिप्लिन और मैनर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर सेंटर है तो ये सेंटर भी एक संगठन है, तो वहां सब लोग मुरली सुनने आते हैं, तो सब भाई बहनों को पता होना चाहिए कि हमको शांति से मुरली सुननी है। जब हम अंदर आएंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, दीदी जो बोल रहे हैं वो सुनना है, मोबाइल को साइलेंट पे रखना है ना। और वो आपस में ये डिसिप्लिन और मैनर्स, तो जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे तो हर चीज यहाँ पे टाइम टू टाइम चलती है, तो एक डिसिप्लिन फॉलो होता है ना, इसीलिए हर चीज में सफलता होती है। लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे देखो कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं तो टाइम पर लगभग चालू होते हैं, टाइम पर लगभग खत्म होते हैं, तो ये सब लोग देख के खुश होते हैं। तो ये भी एक संगठन का स्ट्रांग पॉइंट है कि डिसिप्लिन और मैनर्स होने चाहिए। फिर हमने कुछ 8 वैल्यूज ली इसमें, प्रिंसिपल्स में। तो फर्स्ट है इसमें रिस्पेक्ट, संगठन में एक दो के लिए रिस्पेक्ट। नहीं बाद में, नेक्स्ट पॉइंट है ये। कितना पॉइंट चल रहा है अभी मुझे क्या पता, मैं तो पेपर नहीं देख रही। दसवा, तो ये रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एक दो के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। संगठन में छोटे बड़े सब लोग हैं, तो एक दो के प्रति रिस्पेक्ट। हम एक दो से बात कैसे कर रहे हैं, हमारी वाणी मीठी है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है उनके साथ। ऐसा तो नहीं कि हम गिरा के बात कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो उसको एकदम तुच्छ समझ के उससे वैसे बात करना, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे बीच में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी रिस्पेक्ट कहते हैं कि एक दो को सुनना इज बहुत बड़ी रिस्पेक्ट। लिसनिंग ईच अदर इज बिग रिस्पेक्ट टू गिव टू समबडी। तो इस तरह से सुनना किसी के बोल, वो भी एक रिस्पेक्ट है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आई स्पीक टू एवरी वन इन द सेम मैनर, वेदर ही इज अ गार्बेज मैन और वेदर ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये बात ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो कि जब बड़े आए तो हम बड़े रिस्पेक्ट से मीठे मीठे बात करें, और जो हमारे डिपार्टमेंट में छोटे लोग हो उनसे हम ऐसे ऐसी छोटी छोटी बात करें या उनको एकदम नीचा समझें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संगठन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दो के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जब हम संगठन में साथ में रहते हैं और सेवा करते हैं तो एक दो के अवगुण भी दिखते हैं और एक दो के गुण भी दिखते हैं। तो दो चीज होती है यहाँ पर, या तो हम आकर्षित होते हैं किसी से, या तो हमको किसी के प्रति घृणा आती है। तो जब हम किसी के प्रति आकर्षित भी होते हैं तो क्या सोचना है वो समय कि हाँ, इसको जो विशेषताएं मिली है, इसको बाबा ने ये विशेषताएं दी है, ये जो भी इसकी स्पेशलिटीज है ये बाबा ने दी है। और अगर किसी के प्रति घृणा आती है तो वो अवगुणों को भी साक्षी होके देख लेना कि ये इसका पार्ट चल रहा है। दूसरी पॉइंट साक्षी दृष्टा में हमने ली कि जब संगठन में क्या होता है, हम सबको अपना अपना ओपिनियन देना होता है। कि अगर जैसे हमको ये ग्रुप में पूछा कि हाँ जनवरी मास के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, तो हम सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन एडमिन डिसाइड करेगा कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर मालिक बनकर अपनी ओपिनियन दे देना, लेकिन बालक बनकर उसको स्वीकार करना। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो दुखी कौन होगा, हम होंगे, और फिर हमारी जो रिलेशनशिप्स है संगठन में वो बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए ये वाली पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना कि अगर कोई ओपिनियन उन्होंने डिसाइड कर ली, अगर किसी पर उन्होंने निर्णय ले लिया, तो फिर साक्षी होके देखना उसको कि ठीक है, यही संगठन के लिए अच्छा था, इसीलिए इन्होंने इसको चूज किया। तो ये है साक्षी दृष्टा का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कह रहे थे, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, फेथ, ट्रांसपेरेंसी, इन सबको हमने एक साथ ही लिया है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो फाउंडेशन है कोई भी इमारत की, कि ट्रस्ट होना चाहिए। रिलेशंस है ना, संगठन मतलब रिलेशंस एक दो के बीच में। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए एक दो के बीच में, फेथ होना चाहिए क्योंकि ये कार्य कर रहे हैं तो मुझे इसमें फेथ है कि ये अच्छे से करेंगे ये चीज को, तो वो फेथ होना चाहिए। और इसी से इमारत शक्तिशाली बनेगी। तो ये होना चाहिए एक बात। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर लिया कि अंदर बाहर साफ होना चाहिए, जिसे बाबा ने कहा था ना, अंदर बाहर अगर अलग तो खौफनाक। तो वो अंदर बाहर साफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि संगठन के अंदर ही अपना संगठन बनाए दो तीन लोगों का, है ना। ऐसे भी लोग होते कि हमारा तो संगठन है, अब दो लोग मिलके अपना बनाते और अपनी वहां हाँ एंटी बन जाते हैं कोई कोई भी अंदर ही अंदर। तो वो नहीं होना चाहिए संगठन में, इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो हम को सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हम बड़ों को बता दे, ना कि हम अपने आपस में एक छोटा संगठन बना के कुछ कुछ करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट कंपैशन। अभी इसमें दो चीज है, एक कंपैशन दूसरों के लिए, रहम दिल, दया भाव, सहानुभूति। अच्छा नहीं, रहम दिल, दया भाव, सहानुभूति, है ना, रहम। तो कंपैशन और दूसरा सेल्फ कंपैशन। तो कंपैशन मतलब संगठन में किसी ना किसी से तो गलती होएगी, ऐसा नहीं है कि सब एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। तो जब किसी से गलती हो जाती है तो उसको रहम की भावना से देखना। जैसे यहाँ पर बड़ी दादी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। हम सब जानते हैं कि अगर किसी से गलती भी होती थी तो सिर्फ दादी बुलाकर उनको दृष्टि देके टोली देते थे, बस ये कंपैशन है। कि उसको रियलाइज हो गया उसकी गलती, तो अब मुझे उसको चिल्लाना नहीं है, मुझे उसको कुछ बताना नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही करना है, तो ये जो चिल्लाना करना ये सब नहीं। तो उसके उसको ऑलरेडी अपनी गलती रियलाइज हो गई ना, तो अब और क्या उसको करना। तो इसीलिए कंपैशन जब संगठन में है हम, तो दूसरा संगठन में सेल्फ कंपैशन। नाउ व्हाट इज सेल्फ कंपैशन? सेल्फ कंपैशन मतलब कभी कभार कोई लोग होते हैं ना कि बस मैं ही सब कुछ करूंगी और कर करके थक जाते हैं, और इसको बोलते हैं ड्रेन्ड आउट, बर्न्ड आउट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने प्रति भी प्यार करो, अपने प्रति अपने के ऊपर भी दया करो कि है ना सब मिलकर करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला करूंगा या मैं ही अकेली करूंगी। कुछ दिन पहले एक बहन अपना बता रही थी कि जब मैं आईसीयू में एंटर करती हूँ ना, वहां पर तो सब सिस्टर्स इतना बोलते हैं ओके ओके ये बहन आ गई, लेकिन वो इतना अपने आप को ड्रेन कर चुकी है, इतना अपने आप को कष्ट दे रही है कि अभी बीमार है वो। तो वो नहीं होना चाहिए। जब आप एक संगठन में कार्य कर रहे हो तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप पर ही पूरा बोझ रखा हुआ है और आप ही पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हो? ये मिल बांट के काम करना है इधर। तो कंपैशन नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स, और इसी के साथ में हमने लिया संतुष्टता, कंटेंटमेंट। अब ये दो पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स। अब क्या होता है, जब हम संगठन में हैं तो संस्कारों की टक्कर होती है। संगठन में दो प्रकार के जैसे लोग मैक्सिमम होते हैं, एक होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं और एक होते हैं जो अपना काम अपने लेवल पर अपने टाइम पर वैसे करते हैं। तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको लगता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ है, और वैसे नहीं होता है तो उनको गुस्सा आता है। तो ये जो होता है ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको लगता है ऐसे। और जो दूसरे होते हैं वो बोलेंगे कर लेंगे ना, ठीक है ना, 9 बजे के बदले 9:30 बजे कर लेंगे। तो कितनी जल्दी पढ़ ली है, कौन सी जल्दी है, कहाँ भागा जा रहा है, ये वाले होते हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, ये दोनों ग्रुप को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जो परफेक्शनिस्ट है उनको समझना पड़ेगा कि सामने वाले अपनी कैपेसिटी से ही काम करेंगे और मुझे दुखी नहीं होना है, वो अपने लेवल पे ही काम करेंगे, उनकी जितनी स्पीड है वो इतनी स्पीड पर ही काम करेंगे। अगर वो 1 किलोमीटर चलते तो इसका मतलब ये नहीं उनसे 6 किलोमीटर चलवाएंगे आप। तो ये बहुत ध्यान में रखे, अगर किसी को पेपर लेके क्लास करवानी है तो पेपर लेके क्लास करवाए, अगर आप बिना पेपर के बोलते तो वेरी गुड। तो इस तरह से अभी अगर दूसरा ग्रुप है जो सोचते कि ये परफेक्शनिस्ट है, ये हम पर हमेशा देखो तो टोकते रहते, तो अब ये जो ग्रुप है, अब ये परफेक्शनिस्ट को देख के सोचते कि है ना ऐसे क्यों ये हमेशा हमको चिल्लाते रहते, इनको लगता है कि ऐसे होना चाहिए। तो ये ग्रुप को समझना पड़ेगा कि इसको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ फियर ऑफ फेलियर है, तो इसीलिए वो ऐसे बिहेव करते। उनको लगता है कि सब कुछ ऐसे होना चाहिए, नहीं तो कुछ गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं फियर है, नाम बदनाम हो गया तो, है ना। नहीं, परफेक्शनिस्ट का पॉइंट अलग है, वो टीम लीडर वाला पॉइंट है, जो टीम लीडर बोलेगा टीम मेंबर्स करते हैं, वो अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये व्यवहार की बात हो रही है, संस्कारों की। हम चाहे दोनों में से कोई भी ग्रुप में हो, लेकिन हमको समझना है, इधर पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। हमेशा ही समझना है, हमेशा संगठन में रहना है ना, हमें समझना ही पड़ेगा आपको। एक दिन की बात नहीं है। अभी इसमें दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया कि संतुष्टता। अभी हम क्या होते, असंतुष्ट हो जाते हैं ना दूसरों के व्यवहार से, कुछ भी कोई छोटी छोटी चीजें हमको असंतुष्ट करती है संगठन में, कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये ठीक से नहीं हुआ, ये माइक ऐसे क्यों लगाया, माइक हाथ में देना चाहिए था, वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये बेल सिस्टम क्यों रख दिया यहाँ पे, कुछ चीजें हमको असंतुष्ट करेगी ग्रुप में। तो हमको हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा, हर चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आपको संतुष्ट मणि बनना है, ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट। तो असंतुष्टता एक एडिक्शन हो चुकी है एक्चुअली आजकल, कि है ना हमको हर चीज में असंतुष्टता हो जाती है, तो इसीलिए संतुष्ट रहना है हमको हर चीज में। और जैसे संतुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो दूसरों को देता है, देने वाला होता है, और असंतुष्टता कहाँ पे, जिधर मांगने वाली है ना, चाहिए वाली होती है, कि ये मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। और जहां पर संतुष्टता है वहीं खुशी होगी, वहीं शांति होगी, वहीं प्यार होगा संगठन में, और जहां असंतुष्टता है वहां पर फिर ईर्ष्या है, फिर वहां पर झगड़ा है, अहंकार है ना, यही सब चीजें होगी वो संगठन में। तो ये था पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट लिए इसमें। तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुरुषार्थ में असंतुष्ट तो होना ही चाहिए कि अगर हमको मैं समझा आपका पॉइंट कि अगर मैंने कोई टारगेट सेट किया और वो नहीं रीच हुआ तो आई एम अनसेटिस्फाइड विथ माई ओन सेल्फ, तो बराबर है वो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहना चाहिए मुझे ऐसा लगता है पुरुषार्थ में, और वही हमको आगे बढ़ाता है। अगर हम सोचने लगे कि आज की क्लास तो मैंने परफेक्ट की, तो नेक्स्ट टाइम देर इज नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मैं और अच्छा करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। संगठन में सहनशीलता, सहन शक्ति होनी चाहिए और समाने की शक्ति, क्योंकि यहाँ पे संस्कारों की टक्कर होगी। एक बहन ने हमको कहा था सेंटर पे अगर रहना है तो दो चीजें चाहिए, एक सहन शक्ति और एक समाने की शक्ति, तो सफल हो जाएगा सेंटर का जीवन। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। अब हम एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देंगे। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम के लिए हमारी एक बात हुई एक भाई से, तो हम तो बड़े निर्माणता से उनको समझा रहे थे कि ये काम नहीं हुआ है, तो वो हम पर ही भड़क गए। एक घंटा पहले ही हमने बहुत प्रिपरेशन करके उनको सब कुछ बताया और वो उन्होंने सब अग्री किया, एक घंटा बाद कुछ हुआ और वो हम पे ही चिल्लाने लगे। अब यहाँ पर हमको एक्चुअली सहनशीलता का गुण चाहिए था और समाने का, लेकिन हम जाके वही बात दूसरों को भी बताए ग्रुप के, देखो उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, बात बढ़ गई फिर। तो संगठन में जब आप चाहते हो कि बात नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं संभालो उसको, है ना, और सहन कर लो। जब आप सहन कर लोगे ना तो फुल स्टॉप लग जाएगा, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, नहीं तो 10 लोगों को और मैं बताऊंगी वो बात जाके कि ये हुआ था, उसने ये बोला, और पूरी तरह से डिटेल के साथ। तो ये, और थोड़े दिन पहले ही रमेश भाई जी का एक क्लास होना था कि अगर किसी से दुश्मनी करनी है ना तो उसको करेक्ट करना चालू करो, और दादी जानकी ने ये कहा था, उन्होंने वो क्लास में कहा कि है ना, तो उसने कहा कि किसी को करेक्ट करना मतलब उसको अपना दुश्मन बनाना। तो अगर मैं पॉइंट पहले दुश्मन बनाना है तो उसको अगर करेक्ट किया तो कहीं ना तो कहीं कुछ गलत लग रहा है ना संगठन में, तो संभालो उसको, सहन कर लो। तो यहाँ पे सहनशीलता और जमाने की शक्ति, जैसे कि अगर संगठन में किसी ने गलत काम कर दिया है ना, तो उसको फैलाना नहीं है, उसको फैलाना नहीं है। क्योंकि देखो अगर हमारी कोई लौकिक का एग्जांपल, लो ब्लड रिलेशन का, अगर हमारी बहन से कोई गलती हो गई तो हम जाके बाहर नहीं बताते वो बात को, तो उसी बाहर तो लेकिन अच्छा ही बताएंगे ना, तो समा लेते उसको, तो वैसे ही बाहर जाके नहीं बताओ। बाबा ने कहा है ना कि ये आपके ही भाई बहन है, तो फिर आप उनकी गलतियां जाके बाहर क्यों बताते हो? तो वहां पर भी समान लेना है और साक्षी हो जाना है वो टाइम पर, और शुभ भावना रखनी है। और लास्ट पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट है, एक दो को आगे बढ़ाना संगठन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक दो को आगे बढ़ाना, सबको अपॉर्चुनिटी देना बोलने की, सबको हर सेवा करने की अपॉर्चुनिटी देना। अगर सेंटर इंचार्ज सोचे कि मैं ही भाषण करूंगी और मैं ही ये सेवा करूंगी, बाकी सब ये छोटी छोटी सेवा करो, तो नहीं होगा। संगठन की संगठन का हर व्यक्ति एक, जैसे कि एक ईट के समान है, इमारत की ईट है, और इमारत की हर ईट शक्तिशाली, हर ईट स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी इमारत खड़ी हो पाएगी और तभी सफलता मिलेगी। इसीलिए एक दो को आगे बढ़ाना, तो संगठन में ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी सब बच्चों को आगे रखा है ना, तो वैसे ही हमको भी एक दो को आगे बढ़ाना है। तो ये थे संगठन के 16 सूत्र। तो सबसे पहला था, अभी आप लोग बोलो, सबसे पहला था गोल, लक्ष्य। सेकंड था सीखने की भावना, विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तीसरा था टीम लीडर। चौथा था गुड कम्युनिकेशन, यूनिटी। पांचवा था यूनिटी। छठा था फ्लेक्सिबिलिटी। सातवां था अप्रिसिएशन, रिवॉर्डिंग, शेयरिंग ऑफ सक्सेस। देन आठवां था हेल्दी कॉम्पिटिशन। नवा था डिसिप्लिन एंड मैनर्स। देन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। देन था डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। देन था ट्रस्ट, ऑनेस्टी, फेथ, ट्रांसपेरेंसी, एक पॉइंट था। देन कंपैशन, देन नेक्स्ट द संतुष्टता और अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव एक दो के, देन नेक्स्ट था सहनशीलता और समाने की शक्ति, और लास्टवा पॉइंट था एक दो को आगे बढ़ाना. ओके, ओम शांति.